अध्याय पाँच शिखर एक जीवनी मानवीय अर्थवत्ता की खोज। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। शिखर एक जीवनी तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। इसको छपे 1941 ईस्वी आधे शताब्दी से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी इसकी कथानुभूति और कथा की नवीनता आकृष्ट करती है। जिस समय यह कृति प्रकाशित हुई थी अपनी इसी विशेषता के कारण अत्यंत उत्तेजक और विवादास्पद हुई थी। वह समय प्रेमचंद के बाद का समय था, जब जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय एक नए कथा संसार का द्वार खोल रहे थे। प्रेमचंद के अमर चरित्र सूरदास और होरी हिंदी कथा पाठकों के सामने थे। एक गांधी के मूल्यवादी आदर्श व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दूसरा भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ का। एक अपनी महिमा में अज्ञेय था और दूसरा यथार्थ के चट्टान से टकरा टकरा कर खंड खंड। कहना न होगा कि होरी विद्रोही या क्रांतिकारी चरित्र नहीं है। वह व्यवहार कुशल है, खुशामदी है, ईश्वर में और भाग में विश्वास करने वाला है, परंपराओं और रूढ़ियों को मानने वाला है तथा कदम कदम पर समझौते करते हुए अपनी मिट्टी की गाड़ी के लिए रास्ता निकालने वाला है। उसकी परिस्थितियां ही ऐसी हैं। शेखर उसके समानांतर एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का चरित्र है। मानव जीवन का अनुशासन करने वाले तीन महती प्रेरणाओं अहंता, भय और सेक्स, ऐसे होरी का जीवन यदि भय से अनुशासित होता है तो शिखर का अहंता और सेक्स से। होरी यदि परंपराओं और रूढ़ियों से परिचालित होता है तो शिखर बुद्धि से। होरी अगर टाइप है तो शिखर विद्रोही और क्रांतिकारी। हिंदी में शिखर एक नए मानव व्यक्तित्व का संकेत देने वाला चरित्र तथा शिखर एक जीवनी एक नए युग का संकेत देने वाला उपन्यास है। शिखर एक जीवनी कोई घटना प्रधान उपन्यास नहीं है। उसमें उस प्रकार का कथारस नहीं मिलेगा जैसा आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में मिलता है। यह प्रेमचंद के उपन्यासों की तरह समस्या मूलक उपन्यास भी नहीं है, जिसमें किसी एक सामाजिक समस्या के इर्द गिर्द कथानक का ताना बना बुना जाता है। सच तो यह है कि इस उपन्यास में कोई खास कथा है ही नहीं। ये एक भिन्न प्रकार के रचना शिल्प का उदाहरण है, जिसमें बाह्य से अधिक महत्व आभ्यंतर का है। इसमें विवरण और वर्णन की स्थूलता से बचते हुए सूक्ष्म गहराइयों में घुसने और अंतर्मन के अछूते भावों को पकड़ने की कोशिश है। इसलिए इस उपन्यास की भाषा सूक्ष्म चिंतन और गहन अनुभूति की भाषा है। यह भाषा ऐन्द्रिक संवेदनों के बिंबों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त करती है। यह गद्य में कविता की भाषा है, लेकिन क्या वह भाषा की कतिपय भावुकताओं से मुक्त। शिखर एक जीवनी में अनुभूतियों का बारीक शोधन और अभिव्यक्ति का अद्भुत संयम दिखाई पड़ता है। अज्ञेय एक शब्द शिल्पी प्रसिद्ध हैं और अपने मित कथन के लिए विख्यात। वे मौन को भी अभिव्यंजना मानते हैं और उतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं जितना कहने वाले का सच है। अज्ञेय की भाषा वैसे तो तत्सम है, पर लोक जीवन से भी वे कुशल माली की तरह शब्दों का चयन करते हैं और परंपरा प्राप्त भाषा के बाहर जाकर कुछ नए शब्द बिगड़ते रहते हैं। अज्ञेय की इस भाषा शक्ति का प्रथम साक्षात्कार शिखर एक जीवनी में ही होता है, और कहना न होगा कि हिंदी उपन्यास के लिए भी एक नई भाषा का प्रथम उदाहरण है। इस उपन्यास का शिल्प भी एक प्रयोग है, पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक का सफल प्रयोग। शिखर कहता है, यहाँ पर कमा, जैसे मोतियों की माला टूट गई हो और बिखरे मोतियों को फिर बेतरतीब लड़ी में पिरो दिया जाए, उसी तरह मेरी स्मृतियों की तरतीब उलट सी गई है। शिखर एक जीवनी इन स्मृतियों की ही लड़ी है, एक सजीव चित्रात्मक लड़ी। शिखर एक जीवनी की रचना का उद्देश्य क्या है? कि एक जीवनी या आत्मकथा या उपन्यास लिखना या और कुछ? मुझे तो यह एक जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण वैचारिक मगर रचनात्मक कृति लगती है। स्वयं अज्ञेय ने इसे इनवर्टेड कॉमा स्वातंत्र की खोज कहा, इनवर्टेड कॉमा बंद, और इनवर्टेड कॉमा नीति अनीति के मूल स्रोतों की खोज, इनवर्टेड कॉमा बंद, आत्मनिर्भर। पूरा उपन्यास सौंदर्य, प्रेम, स्वाधीनता, कला, विद्रोह, क्रांति आदि की अवधारणाओं पर गंभीर तार्किक आलोक डालने वाला है। सत्य को समझने और उस तक पहुँचने की एक तड़प पूरे उपन्यास में व्याप्त है। लेखक की मुख्य चिंता मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण की बल्कि कहें कि मानवीय अर्थवत्ता की खोज की चिंता है। जीवन की अर्थवत्ता का तीव्रतम आसाद शायद मृत्यु के क्षण में ही होता है। शेखर एक जीवनी का आरंभ इसी क्षण से होता है। भूमिका में लेखक कहता है, कामा, अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मूल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए। इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन निजू और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में आने लगे। मृत्यु के क्षण में शेखर अपने जीवन का प्रत्यावलोकन कर रहा है, अपने अतीत को दोबारा जी रहा है। मानव जीवन में सबसे प्रबल भाव है प्रेम, जिसे आचार्यों ने रसराज कहा है और वैज्ञानिकों ने मूल काम प्रेरणा। इसलिए सबसे पहले शेखर की स्मृति में शशि कौंधती है, फिर बहन, फिर शारदा, फिर बचपन। किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में उसके बचपन का ही अन्यतम योगदान होता है। शेखर अपने निर्माण में अपनी माँ के आत्म केंद्रित रूप और पिता के कठोर शासन को याद करता है। वह महसूस करता है, योग्य माता पिता वो हैं जो बच्चों को वह प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाएं। इस एक भावना ने यौवन का जितना अपघात किया है उतना शायद ही किसी और कानून या प्रथा का विधान ने किया हो। शेखर के विचार से माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेगी सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट है, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरी में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संचार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित मानवता के प्रीत, अच्छे या बुरे उनके लिए साधारण नहीं है, वे सुलग नहीं सकते, फट भी सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, शेखर अपने पिता की ओर आकर्षित और दूसरी श्रेणी का चरित्र है, वह टाइप नहीं, व्यक्ति है। स्कूल में टाइप बनते हैं इसलिए वह स्कूल में अट नहीं पाता। पुत्र के भविष्य के लिए चिंतित पिता से वह कहता है, इन्वर्टेड कॉमा, पर मैं तो सिक्योर होना ही नहीं चाहता। आप घर गृहस्थी निश्चित आमदनी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, मुझे यही जीवन के रोग लगते हैं, इन्हीं से तो मैं बचना चाहता हूँ। ये चैन की जिंदगी, यह आश्वासन का भाव, यह दिनों दिन जोखिम की अनुपस्थिति, यही तो घुन है जो जीवन को शक्ति को खा जाता है। शेखर किसी पर आस्था नहीं रखता, उसमें गजब की तर्क शक्ति है। वह माता पिता गुरु सबसे तर्क करता है और मनुष्य की आस्था के सबसे मजबूत केंद्र ईश्वर को भी अस्वीकार करता है। उसकी आस्था का एकमात्र केंद्र है उसकी बुद्धि, उसका अपना अंतर। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं, यानी इतना नहीं कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके, ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिससे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती, वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। शिखर का यह निष्कर्ष एक आधुनिक मनुष्य का निष्कर्ष है, एक ऐसे मनुष्य का जो मनुष्य को ही आस्था का केंद्र और जीवन के अर्थ का स्रोत मानता है। इस मनुष्य की ऊर्ध्वगामी शक्ति, उसकी सृजनात्मकता और मौलिकता में शिखर का दृढ़ विश्वास है। मैं सोचता हूँ कि यद्यपि हमारा सिद्धांत इस बात को स्वतः मान लेता है कि मानव की प्रेरणा, प्रत्येक प्रेरणा किसी भौतिक जरूरत से उत्पन्न होती है, तथापि हम इस बात में भी अखंड विश्वास करते हैं कि मानव में कोई ऊर्ध्वगामी शक्ति है जो नैसर्गिक सत्प्रेरणा है। इन्वर्टेड कॉमा, मैं अपने पहले बीते हुए असंख्य युगों का निचोड़ हूँ, लेकिन जीव धूम केतु से इस पृथ्वी के जन्म की, उस पर अत्यंत प्राथमिक जीवन के उद्भव की और उससे उत्पन्न अनेक विभिन्न जातियों के उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज जीव जंतुओं की वसीयत की छाप मुझ पर है। पिछले करोड़ों वर्षों से निरंतर उन्नत होती हुई द्विजात के उच्चतम आदर्शों का केंद्रीभूत पुंज भी मैं ही हूँ, इनोटेड कामा बंद, इनोटेड कामा, और मैं नया हूँ, अपूर्व हूँ, मेरे जीवन का एक क्षण भी पहले कभी नहीं हुआ, मैं एक नई वस्तु हूँ, एक नई प्रतिज्ञा हूँ जिसे भविष्य पूरा करेगा, एक शिक्षा हूँ जो भविष्य के लिए रह जाएगी, इनोटेड कामा बंद। मनुष्य की शक्ति और सृजनात्मकता को रेखांकित करना शायद शेखर की जीवनी के लेखक की मुख्य चिंता रही है। अपने इस चिंता को और जीवनी लेखन के उद्देश्य को लेखक ने स्पष्ट भी किया है। शेखर को बार बार झिझक होती है कि वह अपनी आत्मकथा क्यों लिख रहा है। आत्मकथा लिखना एक प्रकार का दंभ है, जो उसका अपना है, उसका गोपन रहना है क्या उपयुक्त नहीं? प्रकाशन तो विभाजन है, फिर भी वह आग्रहपूर्वक अपने को खोलता है, इनोटेड कामा, क्योंकि यह आत्मकथन नहीं है, केवल स्वीकार है, साक्षी है, आत्म साक्षात्कार है। मैं मेरा हूँ, किंतु केवल इसी अर्थ में और इसी मात्रा में जिसमें कि मैं अमुक का हूँ और अमुक का और अमुक का। इस ऋण का स्वीकार ही मेरा धन है, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, एक आकस्मिक अणुपुंज हूँ जिसका न कारण है न परिणाम। आत्मकथाकार शिखर के इसी निष्कर्ष को दूसरे शब्दों में जीवनीकार अज्ञेय दोहराते हुए कहते हैं, डॉक्टर कमल, मैं शेखर की कहानी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें से जीवन के अर्थ के सूत्र पाने हैं, किंतु एक सीमा ऐसी आती है जिसके आगे मैं अपनी और शेखर की दूरी बनाए नहीं रख सकता। उस दिन का भोगने वाला और आज का वृत्तकार दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि अंततः उसके जीवन का अर्थ मेरे जीवन का तो अर्थ है, और जो सूत्र मुझे पकड़ने हैं उनके प्रति अनासक्त नहीं हूँ। इसमें इतिहासकार की प्रजा है तो हो, इतिहास मेरे लिए कुछ नहीं है, घटनाओं का अनुक्रम भी कुछ नहीं है, जीवन का अंतिम मान है जीवन, हमारे जीवन का मान है यह अद्भुत सृष्टि, मानव प्राणी और प्राणी की प्राणवत्ता का मान है उनका प्यार, उसकी अपने आप से बाहर प्रसारित होने की निछावर होने की शक्ति। कथा का महत्व मेरे लिए नहीं है, जिस चरित्र की कथा कहता हूँ उसी का महत्व है, और इस बात का कि मैं स्वयं जाने से पहले उसे स्वीकार कर जाऊँ, साक्षी दे जाऊं। कहना न होगा कि उपन्यास के लगभग अंतिम पृष्ठों के ये वाक्य उपन्यास के उद्देश्य और लेखक की चिंता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। अब इसके बाद भी कोई पाठक या आलोचक शेखर या उसके जीवनीकार को व्यक्तिवादी, अहमन्वय या अराजकतावादी मानता है तो इसमें शेखर या उसके जीवनीकार का दोष नहीं है। शेखर मूलतः एक स्वाधीन चरित्र है, जो स्वाधीन होता है वही व्यवस्था विद्रोही कहा जाता है। शिखर कलाकार है, प्रेमी है, सौंदर्य प्रेमी है। कला और प्रेम दोनों विद्रोह की ही दो संज्ञाएं हैं। कला यदि सृष्टि के नियंता के विरुद्ध विद्रोह करती है तो प्रेम समाज की प्रचलित रूढ़ी नैतिकता के विरुद्ध। शिखर के विद्रोह की खासी आलोचना भी है, उसकी स्वाधीनता को व्यक्तिवादी अहंकार और उसके प्रेम को नीति विरुद्ध भी कहा गया है। लेकिन ऐसा कहने वालों को एक बार शेखर और उसके जीवनीकार के शब्दों और उनके भीतरी उद्विलनों पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। शिखर का जीवनीकार शिखर की कहानी में से जीवन के अर्थ को सूत्र ढूंढता है। पूरा उपन्यास ऐसे सूत्रों से भरा पड़ा है। ये सूत्र जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों और उन अनुभवों के चिंतन की भट्ठी में डालकर निकाले गए हैं। बचपन से वयोसंधि और युवावस्था तक शिखर के व्यक्तित्व निर्माण की पूरी प्रक्रिया पाठकों को गहन जीवन सूत्रों से समृद्ध करती चलती है। लेखक ने बाल्यावस्था और जेल जीवन का कुछ विस्तार से वर्णन किया है और ये दोनों प्रसंग बहुत अर्थवान है। दोनों में जीवन सूत्रों की गंभीर विवेचना हुई। प्रेम और नैतिकता के बारे में शशि का चिंतन पारदर्शी है। वह प्रचलित नैतिकता को निष्प्राण मानती है क्योंकि इसका जीवित सत्य से कोई सरोकार नहीं। उसकी दृष्टि में इस नैतिकता के मूल में निषेध है, इसीलिए यह नकारात्मक है। उसका पक्ष यह है कि क्यों निषेध नीति का मूल वो क्यों न नीति इतनी बड़ी हो कि सहज वृत्ति का बहिष्कार करने की वजह उसे प्राप्त कर ले, अपने में सोख ले। प्यार के बारे में उसकी दृष्टि है कि इनोटेड कामा, किसी भी एक व्यक्ति को इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि जीवन में किसी दूसरे उद्देश्य की गुंजाइश न रह जाए, कि जीवन एक स्वतंत्र इकाई है और यदि वह बिल्कुल पराधीन हो जाए तो यह कला नहीं है, क्योंकि कला के आदर्श से उतर कर है। उपन्यास में शशि का अंतिम कथन तो प्रेम, विद्रोह, कला, स्वाधीनता और आदर्श की जटिल अवधारणाओं को थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर देता है और शेखर से कहती है, इनोटेड कामा, कभी एक दिन एक क्षण भर के आदर्श माने जाने का सौभाग्य हर किसी को मिल जाता है, पर चिरंतन आदर्श कोई नहीं है, न हो सकता है। इसीलिए जो अपने प्रिय के प्रति चिरंतन सच्चा है वह अवश्य किसी आदर्श से च्युत है, और जो आदर्श के प्रति निष्ठावान है वह अवश्य कभी न कभी प्रिय हो झर जाने देगा। साधारण मानव और कलाकार विद्रोही में यही अंतर है। मैं नहीं जानती कि तुम मानव कब हो शेखर, किंतु अगर उसकी क्षमता है तो उससे बड़े होने की अनुभूति स्वाधीनता में तुम्हें सहर्ष देती हूँ। वेंकट कामत, यह स्वाधीनता शिखर एक जीवनी के लेखक की दृष्टि में मनुष्य का चरम मूल्य है। जो स्वाधीन नहीं वह न कलाकार हो सकता है, न विद्रोही, न प्रेमी। शिखर इन तीनों रूपों में सामने आता है। वह जीवन के जीवन भर विद्रोह करता है, ईश्वर से, समाज से, माता पिता से, उस सब से जो दूषित और सड़ा हुआ है, और शशि से वह मूल्यवान सत्य प्राप्त करता है कि किसी के विरुद्ध लड़ना पर्याप्त नहीं है, किसी के लिए लड़ना भी जरूरी है। उसका विद्रोह संवेदनशील और सार्थक विद्रोह है। वह जन्म से और स्वभावतः सौंदर्य प्रेमी रहा है। अपने एकांत छोड़ों में वह सौंदर्य की अनुभूति में खो जाता है। उसकी सौंदर्य चेतना प्रबल है, जो गति को, लय को, निरवता को देखकर उसमें डूब जाती है। उसके भीतर का कलाकार और शब्दशिल्पी पाठक के सामने आ जाता है। कहना न होगा कि शिखर एक जीवनी में प्रकृति के दुर्लभ विशिष्ट सौंदर्य चित्र भरे पड़े हैं, और यह उपन्यास शिखर के कलाकार रूप को भी उतना ही सामने लाता है जितना उसके विद्रोही रूप। जीवनी के दूसरे खंड में प्रकाशन जगत की कटु वास्तविकताओं का जो वर्णन लेखक ने किया है, वह भारतीय समाज में एक लेखक के संघर्ष का सही चित्रण है। इस संदर्भ में भी शिखर के सामने उसका लक्ष्य स्पष्ट है। मुझे कुछ कमाना जोड़ना नहीं है, लिखना है तो अभी पैसा जोड़ने के लिए नहीं, वह साधन होगा एक बड़े उद्देश्य का। मैं अपने समाज की, अपने आसपास के जीवन के सब अंगों की व्यवस्था बदल देने का व्रत ले रहा हूँ। यह तो आप ही मानेंगे कि परिवर्तन आवश्यक है, और नहीं तो इतना तो आप मानेंगे ही कि देश को स्वाधीन होना चाहिए। शिखर एक जीवनी जिन दिनों की रचना है वे दिन भारतीय इतिहास में स्वाधीनता संघर्ष के तूफानी दिन थे। एक ओर गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन चल रहे थे, दूसरी ओर भूमिगत क्रांतिकारी कार्रवाइयां भी जारी थी। उपन्यास में इन दोनों के सक्रिय गतिविधियों के चित्र और इनकी वैचारिक गूंज स्पष्ट है। शिखर गांधी के असहयोग और स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित है। उसे अपने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए हैं। उसके मन में विदेशी माल के प्रति घृणा हो गई है। बाद में वह कांग्रेस नगर कैंप में भी ड्यूटी करता है और झूठे आरोप में फंसाया जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में उसकी भेंट विद्याभूषण, मदन सिंह और मोहसिन से होती है। यहाँ स्वतंत्रता, दासता, हिंसा, अहिंसा, आतंकवाद, विद्रोह और क्रांति आदि शब्दों प्रश्नों का वह पुनः साक्षात्कार करता है। अनेक प्रश्नों पर उसे दृष्टि मिलती है और यह जेल जीवन उसके व्यक्तित्व निर्माण में एक अपनी अमित छाप छोड़ जाता है। अभियान या अहंकार एक सामाजिक कर्तव्य हो सकता है, शिखर के लिए एक नया दृष्टिकोण है, जिसे वह विद्याभूषण से पाता है। शिखर के तर्कों का जवाब देते हुए विद्याभूषण कहता है, जो रोष आदर्श के लिए है वह धर्म है, यह तो तय है। रहा यह कि आदर्श क्या है, तो उसके बारे में साधारण नियम कठिन है, पर कहा जा सकता है कि जो भी भावना मानव और मानव के भेद को मिटाने की, उसकी सीमाओं और बंधनों को अधिकाधिक प्रसारित करने की चेष्टा करती है, वह आदर्श है। हिंसा और अहिंसा के बारे में शिखर और विद्याभूषण के बीच लंबा तर्क वितर्क चलता है। विद्याभूषण के अनुसार कई बार हिंसा इतनी नितांत आवश्यक होती है कि उचित हो जाती है, इतनी अधिक उचित होती है कि आवश्यक हो जाती है। वास्तव में वह सब हिंसा रहती ही नहीं। शिखर इस पर बहुत गहराई से विचार करता है और इससे पूरी तरह सहमत नहीं लगता। बाबा मदन सिंह शिखर को अनेक सूत्र देते हैं जिनसे उसकी अनेक अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। वे दीवार पर लिखे अपने सूत्र शिखर को बताते हैं। एम्प्रेट का माम, दास्ता क्या है? अप्रिय तथ्य का ज्ञान नहीं, असत्य का ज्ञान भी नहीं। दास्ता है सत्य या असत्य की जिज्ञासा को शांत करने में असमर्थ होना। वह बंधन, वह मनाही जिसके कारण हमारा ज्ञान मांगने का अधिकार छिन जाता है। इनोटेट कामा, शांत बैठे रहना तपस्या नहीं है, शांत न बैठ सकने से ही तपस्या शुरू होती। इनोटेट कामा, क्रांति का प्रमाण यह है कि इसके लिए चारित्र्य आवश्यक है। इनोटेट कामा, हर एक को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। ये नोटेड कामा क्लोज, ये नोटेड कामा। हिंसा स्वरक्षात्मक भी सफल हो सकती है, यानी केवल पारिभाषिक हिंसा तपस्या तो जिज्ञासा है क्योंकि वही सबसे बड़ी पीड़ा है। नोटेड कामा पर नोटेड कामा। अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है और दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। नोटेड कामा पर बाबा मदन सिंह के ऐसे सूत्र हैं जिनके लिए वे घंटों घंटों महीनों वर्षों जेल की तन्हाई में रोए हैं। बाबा कहते हैं, नोटेड कामा, मैं प्रकृति को बड़ी चीज मानता हूँ। यह भी मानता हूँ कि इसके नियम एक बहुत विशाल बुद्धि पर प्रज्ञावट किए हुए हैं और मुझे मानव जाति के भविष्य में गहरा विश्वास है। क्षतिपूर्ण स्वयंभू है यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इसीलिए मैं आज के संहारकारी युग में भी मानव के भविष्य में विश्वास करता हूँ। भविष्य वर्तमान की क्षतिपूर्ति है, इसीलिए वह स्वयंभू है, उससे निस्तार नहीं है। नोटेड कामा। शिखर एक विशिष्ट चरित्र है पर असामाजिक नहीं। अपने बचपन में ही वह सामाजिक समस्याओं का साक्षात्कार करता है। सामाजिक वैषम, जाति पात, नारी पुरुष भेद, पाखंड आदि ही तो उसे विद्रोही बनाते हैं। बचपन में एक अछूत जाति की लड़की के साथ खेलने से शेखर को मना किया जाता है, उसे आघात लगता है। मालाबार में एक लहू और कीचड़ में सनी अछूत स्त्री को कंधे पर लाद कर वह ले जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। अशिक्षा और जनेऊ नहीं रखता, पूजा पाठ नहीं करता, इसलिए ब्राह्मण छात्रावास से लड़के उसे छात्रावास से निकाल देने के लिए प्रिंसिपल को अर्जी देते हैं। वह स्वयं अपनी इच्छा से ब्राह्मण छात्रावास छोड़कर हरिजन छात्रावास में रहने लगता है और हरिजन छात्रों के साथ घुल मिल कर रहता है, एंटीगोनम क्लब बनाता है। और यह सब वह किसी अहंकार के चलते नहीं, क्लब की एक रात्रि पाठशाला में अछूत श्रोताओं को संबोधित करते हुए वह कहता है, मैं ब्राह्मण होकर आप लोगों को अपने साथ ले रहा हूँ, ऐसा भाव मुझ में नहीं है, मैं स्वयं आपके साथ आया हूँ। भीतर कहीं मैं भी अछूत हूँ, आपका भाई हूँ। मैंने अपना आप को आपको ध्यान नहीं दिया है, मैंने आपको पाया है। शिखर समाज में नारी की स्थिति को भी लेकर विचलित है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर वह अपने कर्म द्वारा ही इसको व्यक्त करता है। असहयोग आंदोलन के दिनों में छोटी बड़ी सभाओं में वह न केवल अपने विचार व्यक्त करता है बल्कि एक सभा में बोलने के लिए शशि को भी तैयार करके ले जाता है। उस सभा में शशि कहती है, आदर्शों का अभिमान आसान है, विवाह का हिंदू आदर्श, गृहस्थ धर्म, सतीत्व का हिंदू आदर्श, किंतु अभिमान की काई के नीचे आदर्श का पानी क्या कभी बहता है कि बंधकर सड़ गया है। गृहस्थ धर्म की उभयमुखी होता है, किंतु आज के जीवन में पुरुष की ओर से देह कुछ भी नहीं है, सख्य तो दूर, करुणा भी दिया नहीं दी, और नारी केवल पुरुष के उपयोग का साधन रखी है, निरी सामग्री जिसे वह जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे अपनी सृष्टि की आग में होम कर दे। नियंत्रित काम है। दलित और नारी के बारे में आज के लेखक की संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में इन पंक्तियों पर गौर किया जा सकता है जो 1943-44 में लिखी गई थी। सच तो यह है कि शिखर जीवनी और उसकी समस्याओं से पलायन नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि पलायन संभव नहीं, आगे भी जीवन ही है। नोटेड कामा। छाया, तुम्हें भूलने नहीं जाता, तुम साथ चलो, पहले मौसी के पास और गौरा के पास, फिर आगे, कर्म में विस्मरण नहीं है, शशि कर्म में तुम हो, चिरंतन प्रेरणा, चिरंतन क्योंकि मुक्त और मोक्षदा। नोटेड कामा। और अंत में शेखर एक जीवनी की भूमिका से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा जो मुझे इस उपन्यास की सबसे अच्छी समीक्षा प्रतीत होती है। नोटेड कामा। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता का संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब हम आज सभी संश्रेष्ठ चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शिखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। नोटेड कामा।